नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कितने किसान मरे हैं केंद्र सरकार को नहीं पता। संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है। आखिर सरकार क्यों नहीं बता पा रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई। संसद के तीन तीन सत्रों में सांसदों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या वाकई सरकार के पास इतने दिनों में कोई आंकड़ा नहीं है? यह सवाल बजट सत्र में भी पूछा गया। सांसद अदूर प्रकाश और वीके श्रीकंदन ने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या को लेकर सवाल किया था। लोकसभा में 2 फरवरी 2021 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि कितने किसान मरे हैं। इसकी जगह राज्य और केंद्र के अधिकारों का ब्यौरा उस जवाब में लिख दिया गया। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से व्यक्तियों और संगठनों पर नजर रखती है, जब जरूरत होती है तब कार्रवाई करती है। यह भी जवाब का हिस्सा हो सकता है, मगर उस सवाल का जवाब नहीं कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह और केसी वेणुगोपाल सवाल करते हैं कि क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन कर रहे किसानों के मरने की जानकारी है। यदि हां तो कितने किसानों की मौत हुई है, राज्यवार ब्यौरा दें। यह सवाल भी उसी बजट सत्र में पूछा जा रहा है। इसका जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देते हैं। जवाब की तारीख है 5 फरवरी 2021, यानी नित्यानंद राय के जवाब के तीन दिनों के बाद का यह जवाब है। इसमें कृषि मंत्री कहते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। गृह मंत्रालय ने बताया है, ये ध्यान में रखिए, गृह मंत्रालय ने बताया है कि देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलनकारी किसानों की मौत से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि किसान आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और 1 व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सवाल में किसान हैं, जवाब में लोग हैं। जिस गृह मंत्रालय ने 3 दिन पहले बताया है कि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, 3 दिन बाद उसी गृह मंत्रालय से पूछकर कृषि मंत्रालय बता रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और 1 व्यक्ति ने आत्महत्या की है। इस जवाब में किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों जवाब फरवरी के बजट सत्र के हैं, लेकिन यह बात रिकॉर्ड पर है कि फरवरी तक सरकार को जानकारी है कि किसान आंदोलन के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। अब अगस्त में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कुमार केतकर, राजमणि पटेल यही सवाल करते हैं कि क्या सरकार ने आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ही जवाब देते हैं, जिन्होंने फरवरी में सबसे पहले जवाब दिया था। इस जवाब की तारीख है 11 अगस्त 2021। कहते हैं कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। इस तरह की कोई सूचना केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है, तथापि दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या के कारण 1 किसान की मौत होने की सूचना दी है। आपने अभी सुना कि कृषि मंत्री अपने जवाब में दिल्ली पुलिस के हवाले से कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है, और अब अगस्त में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जवाब में लिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने 1 किसान की आत्महत्या की ही सूचना दी है। अब संख्या 3 से 1 पर आ गई है, लेकिन अगस्त के जवाब में किसान शब्द का इस्तेमाल है, फरवरी के जवाब में लोग हैं किसान नहीं। क्या आपको पता चला कि जवाब देने के मामले में सरकार संसद में पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर कितनी गंभीर है? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई, उस दौरान 1 किसान की मौत हुई। इसे लेकर विवाद है, नवरीत सिंह की मौत हुई थी। क्या वो आंकड़ा केंद्र सरकार नहीं रख सकती थी सामने? इस शीतकालीन सत्र में भी यह सवाल उठा है कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। लोकसभा में 1 नहीं बल्कि 8 सांसदों ने यह सवाल किए हैं। इसमें सरकार की सहयोगी पार्टी के सांसद राजीव रंजन सिंह भी हैं। कई सवालों में आखिरी के दो सवाल हैं कि किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा दीजिए और बताइए कि क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो जवाब में कृषि मंत्री कहते हैं कि इस मामले में कृषि मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने किसान आंदोलन के दौरान संसद में पूछे गए चार अलग अलग प्रश्नों और चार जवाबों को दिखाया, बताया कि दो जवाब में सरकार कह रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है, एक जवाब में कहती है 3 लोगों की मौत हुई है, एक जवाब में कहती है 1 किसान ने आत्महत्या की। लेकिन अब जब संयुक्त किसान मोर्चा पूरी सूची के साथ मुस्तैद है कि 700 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, 1 साल बाद सरकार कहती है उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं उठता है।
अगर सरकार चाहे तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है, लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नियत नहीं
है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है,
लिखित जवाब
भारत की लोकसभा में कहा है। इससे साफ है कि जो कृषि एक राज्य का विषय है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जब ये राज्य कोई आंकड़े नहीं है तो फिर भारत सरकार कैसे कहते कि किसी की मौत इस किसान आंदोलन में हुआ है।
यह बात सही है, पंजाब ने मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया है और नौकरी भी दी है, 100 लोगों को दिया है और 100 लोगों को देना बाकी है। करनाल में पुलिस से टकराव के बाद किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी, जिसे लेकर किसानों ने करनाल मुख्यालय को घेरा था। तब हरियाणा सरकार ने मुआवजा और नौकरी देने की मांगें मान ली थी। क्या ये आंकड़े लेकर भी सदन में सांसदों को नहीं दिए जा सकते थे? इन आंकड़ों के होते हुए सरकार कैसे कह सकती है कि उसके पास इस बात के कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने किसान मरे हैं? अगर रिकॉर्ड रखना राज्यों का काम है तो राज्यों से पूछकर बताया जा सकता था, ठीक उसी तरह से जैसे राज्यों के हवाले से संसद में सरकार ने कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। सबने उस दौर में देखा था और अस्पतालों ने चीख चीख कर कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, मरीज मर रहे हैं। सरकार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवा रही थी, कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी से लोगों के मरने की खबरें आ रही थी, डॉक्टर तक मरे, लेकिन राज्यों से पूछकर केंद्र ने संसद में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक सवाल किया था कि क्या यह सही है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण सड़क पर और अस्पताल में कई लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में 20 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार कहती हैं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नियमित रिपोर्ट दी है, वैसे किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का ब्यौरा नहीं दिया है। लोकसभा सांसद के रविंद्र कुमार ने एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में कोई जांच की है। 20 जुलाई 2021 को राज्यसभा में जिस स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों ने कहा है किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, वही स्वास्थ्य राज्य मंत्री 20 दिनों के बाद 10 अगस्त को लोकसभा में जवाब देती हैं। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार कहती हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि SVRR अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर कुछ मरीजों की मौत हुई है, ऑक्सीजन लाइन में दबाव कम हो गया था क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कम उपलब्ध था। उसी तरह अपराध भी राज्यों के विषय हैं, तो क्या केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो हर साल रिपोर्ट तैयार कर देश को नहीं बताता है और उसके आधार पर सरकार संसद में जवाब नहीं देती है? अब सुनिए केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं हिमांशु से कि कैसे मौत के आंकड़े गृह मंत्रालय तक पहुंचते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं पहुंचे? इन केंद्रीय मंत्री के जवाब के अनुसार गृह मंत्रालय के पास डेटा होना चाहिए, तो फिर संसद में क्यों नहीं बताया जाता?
लोकल अथॉरिटी से वो रजिस्ट्रेशन होता है और ये लोकल अथॉरिटी से स्टेट के डेटा में होता है और ये फिर होम के डेटा से कलेक्ट होकर जानकारी के रूप में सेंट्रल के पास आता है। ये प्रोसेस के हिसाब से शायद ये पर्टिकुलर जानकारी के बारे में ये स्टेटमेंट हो सकता है।
इस सरकार के बयानों को सुन सुन के अब लोगों के कान थक गए और उसका कोई नोटिस नहीं लेते हैं।
इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब में फिर से देखिएगा। एनडीटीवी इंडिया का अपना यूट्यूब चैनल है, वहां मिलता है प्राइम टाइम सारा। पता चलेगा कि एक जवाब में तीन किसान मरे हैं और एक जवाब में एक किसान, और इसके बाद भी कल ही दिए अपने चौथे जवाब में सरकार कहती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि कोई मरा है या नहीं। सरकार ने संसद में दिए अपने ही जवाब को कल गायब कर दिया एक तरह से।
देखिए, ये सरकार की मंशा नजर आती है, बीजेपी की मंशा नजर आती है कि बीजेपी उसके मन में, हम कहते हैं ना कि कानून काला नहीं है, इनका दिल काला है, ये नजर आता है। काहे की सरकार है, अगर उसको देश का किसान यहाँ पर सड़क पे बैठा है, शहीद हो रहा है, तो उसका आंकड़े नहीं पता है? हमसे ले लें, इनकी इंटेलिजेंसी क्या करती है?
सरकार के पास आकलन होना चाहिए। एक एक चीज की बारीकी से सरकार ने हम लोगों का आकलन किया, फिर मौतों का आकलन तो क्यों नहीं कर पाई? या तो हम लोगों से ले लें, अगर हम लोगों से एसकेएम के द्वारा उनको लगता है कि उनका आंकड़ा हम नहीं मान सकते हैं तो सरकारों से ले लें। मौत मौत होती है, आम बात नहीं होती है।
ऐसा नहीं है कि सरकार के पास किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं होता या पता नहीं होता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक सवाल किया कि क्या सरकार को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने फरवरी में कानून बनाया है कि गूगल और फेसबुक को न्यूज का भुगतान करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा पता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है इसका पता है, होना भी चाहिए, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। किसानों की मौत के आंकड़े देते वक्त आप ये नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था राज्यों के विषय है। क्या राज्यों से पूछकर सरकार ये जानकारी नहीं दे सकती थी कि कितने किसान मरे हैं? खंभे गाड़कर कटीली तारे लगाई गई हैं यहां ताकि आंदोलनकारी किसान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विरोध करने ना पहुंच जाएं। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम होना था, यहां पर हरियाणा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई थी। उधर सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 26 संगठनों की बैठक हुई, इसमें खापों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
मेजोरिटी थाम्बे का मेजोरिटी की राय है कि जहाँ का मोड चेंज कर देना चाहिए, जहाँ से जहाँ का स्टेटों में लड़ना चाहिए, तो बहुत सी डिमांड स्टेट्स की भी है, सेंटर की भी है, तो पहले भी तो शुरू स्टेटों से किया था ना, अगर नहीं सरकार मानेगी तो फिर आ जाएंगे।
कोई संयुक्त किसान मोर्चे में फूट नहीं है और मीडिया वालों का धन्यवाद है भाई, पूरे देश में कम से कम किसान के नाम को नंबर एक पर रखा, तो उसके लिए तो सारे मीडिया का धन्यवाद।
लगातार खबरें आप लोगों की,
लगातार खबरें चल रही है भाई।
सवालों की भाषा और जवाबों की भाषा पर गौर कीजिए, काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखना चाहिए कि क्या सरकार प्रश्न का सीधा उत्तर देती है या उसकी जगह कुछ और लिख देती है, जवाब को टालती है या घुमा देती है। मीडिया इन्हें आमतौर पर संक्षिप्त खबरों में निपटा देता है और न्यूज चैनलों में इन प्रश्नों और उत्तरों के लिए आज तक कोई फॉर्मेट नहीं बन सका जिससे जनता को बताया जा सके। इन सवालों को देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके सांसद कितनी मेहनत करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उज्ज्वला को लेकर सवाल किया था। आप इन सवालों पर गौर कीजिए और सरकार के जवाब पर भी। सवाल पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछा गया है कि 2021 में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से सरकार को कुल कितना मासिक राजस्व अर्जित हुआ, 2021 में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों से सरकार द्वारा अर्जित कुल मासिक राजस्व कितना है। प्रश्नकर्ता सांसद जानना चाहते हैं कि दोनों प्रकार के सिलेंडर की बिक्री से जो राजस्व मिला है उसकी राशि बताएं, लेकिन जवाब में राशि का जिक्र नहीं है। सरकार बताने लग जाती है कि कीमतें कैसे तय होती हैं, जीएसटी कितना लगता है, जबकि यह नहीं पूछा गया था। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली अपने जवाब में कहते हैं कि घरेलू व गैर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से मिलने वाला राजस्व माह दर माह अलग अलग होता है, क्योंकि मुद्राओं की विनिमय दर तथा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उत्पादन के मूल्यों के आधार पर तेल कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री मूल्यों को अधिसूचित किया जाता है, तथापि सरकार घरेलू एलपीजी पर 5% जीएसटी और गैर घरेलू एलपीजी पर 18% जीएसटी लेती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और सवाल है कि 2021 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर के लिए बैंक खातों में हस्तांतरित की गई सब्सिडी का माहवार ब्यौरा क्या है। जवाब में कहा जाता है कि घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली राज्य सहायता यानी सब्सिडी बाजार दर बाजार अलग होती है और गैर राज्य सहायता प्राप्त मूल्य पर रिफिल की खरीद करने पर लाभार्थी के बैंक खाते में लागू राज्य सहायता का सीधे अंतरण कर दिया जाता है। राज्य सहायता का भार सरकार वहन करती है। क्या सरकार ने अपने जवाब में बताया कि हर महीने प्रत्येक सिलेंडर के हिसाब से खाते में कितनी सब्सिडी दी जाती है? वो तो प्रश्नकर्ता को भी पता है कि सब्सिडी खाते में जाती है, तो सरकार क्यों बता रही है कि सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में जाता है। सवाल इस बात को लेकर था कि कितना पैसा गया है, जवाब में इसका जिक्र नहीं। सरकार ने क्यों नहीं बताया कि कितनी राशि हर महीने बैंक खाते में जाती है, जबकि 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में सरकार ने एक सवाल के जवाब में पूरा ब्यौरा दिया है। तेल निर्माता कंपनियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने 22 करोड़ 91 लाख से अधिक सिलेंडर दोबारा भरवाए हैं। 2016 से 19 के दौरान प्रति सिलेंडर औसत सब्सिडी का भी ब्यौरा है। 2016-17 में प्रति सिलेंडर 108.78 रुपए राज्य सहायता दी गई। 2017-18 में प्रति सिलेंडर 173.41 रुपए, 2018-19 में प्रति सिलेंडर 219.12 रुपए की राज्य सहायता दी गई। इसका मतलब है कि सरकार एक समय बता रही है कि प्रति सिलेंडर कितनी सब्सिडी दी गई है। ये वो सवाल है जिसके बारे में मंत्री खुद से ट्वीट नहीं करते। कर दें, कभी मंत्री ट्वीट नहीं करेंगे कि उज्ज्वला योजना के तहत इतने लाख गरीब लाभार्थी अब सिलेंडर नहीं भरा पा रहे। करेंगे, प्रथम तालाबंदी के समय सरकार ने घोषणा की थी कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने एक सवाल किया जिसका जवाब इस 29 नवंबर को सरकार ने राज्यसभा में दिया है। रिपुन बोरा का सवाल था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एलपीजी की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर घरेलू बजट को प्रभावित करने वाली है, और वह भी उस समय जब महामारी के दौर में नौकरी चले जाने या वेतन में कटौती होने के कारण अनेक लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। सरकार जवाब देती है कि वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान मदद करने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत अधिकतम 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, और इस योजना के तहत उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने 14 करोड़ 17 लाख निःशुल्क एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग किया है। एक उपभोक्ता को फ्री में 3 सिलेंडर दिए जाने थे, तो क्या 8 करोड़ के हिसाब से फ्री सिलेंडरों की संख्या 24 करोड़ नहीं होनी चाहिए? मैं गणित में कमजोर हूं, लेकिन आप तो नहीं है, क्योंकि सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ उपभोक्ता हैं। अगर सभी को मिले हैं तो राज्यसभा में 14 करोड़ क्यों बताया गया? 10 करोड़ सिलेंडर कहां गए? इस साल 12 अगस्त को जब उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण चरण लॉन्च हुआ तो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की प्रेस रिलीज में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं। इस हिसाब से तो यह संख्या 24 करोड़ सिलेंडरों की हो जाती है, लेकिन सरकार संसद में 14 करोड़ क्यों बताती है और प्रेस रिलीज में कुछ और क्यों बताती है? सूचक पटेल को एक आरटीआई के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मुफ्त में सभी 3 सिलेंडर दिए गए हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ उपभोक्ता हैं और सभी को 3-3 सिलेंडर फ्री में दिए गए हैं। तो इस एक आरटीआई के हिसाब से कुल लाभार्थियों के 12.5% को ही फ्री के 3 सिलेंडर मिले हैं। इसलिए सवाल पूछना पड़ता है, तभी पता चलता है कि 8 करोड़ उपभोक्ताओं को 24 करोड़ सिलेंडर मिले या नहीं। अगर मिले होंगे तो सरकार हर जगह एक तरह से ही जवाब देगी, उसके आंकड़ों में अंतर नहीं आना चाहिए। आपने अभी देखा कि सरकार की प्रेस रिलीज में कुछ और, आरटीआई में कुछ और संसद में कुछ और है। क्या सरकार के मंत्री खुद से ट्वीट करेंगे कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी मई 2020 से जीरो क्यों हो गई, नहीं करेंगे। इस साल मार्च महीने में हिंदू अखबार में विस्तार से एक रिपोर्ट छपी है कि मई 2020 से उज्ज्वला की सब्सिडी जीरो हो गई। अब तक तो खंडन भी हो जाना चाहिए। आज वाणिज्यिक सिलेंडरों के दाम 100 रुपए बढ़ा दिए गए।
1450 को, 1350 को, 1650 को, चलो कटो ना। अब हवा जो 1930 रुपया को, हम महंगाई तो है ही, तुम बताओ। ये 5-5 रुपए की चाय पी रही ना, 6 रुपया करें तो लड़वे तैयार है।
चाय बेचते हैं, पहले 5 रुपए की चाय बिकती है, अब पहले अब 10 की बेच रहे हैं तो उसमें भी पड़ता नहीं घर। पहले 1650 रुपए का सिलेंडर आता था करीब, और फिर अब 2050 का आ रहा। क्या बच्चों को खिलाए, क्या खिलाए, क्या।
संसद में सवाल को लेकर एक और मामला है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखकर हैरानी जताई है कि 5 सत्रों से मीडिया के कुछ ही संगठन को सदन के भीतर प्रेस गैलरी में आने दिया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों को सेंट्रल हॉल में जाने से रोक दिया गया है। ये वो जगह है जहां पत्रकार सांसदों और मंत्रियों से ऑफ रिकॉर्ड चर्चाएं करते हैं। संसद सत्र के दौरान सांसदों को सदन के भीतर और पत्रकारों को सदन के बाहर उसी परिसर में सवाल पूछने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इस तरह से गीतकार और फिल्मी कलाकार को इंटरव्यू दिया है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे विपक्ष के सांसद प्रेस के सामने हाजिर हैं। बेशक प्रधानमंत्री इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, लेकिन किसी और व्यवस्था या रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही सकते। जिस नेता को पप्पू कहा गया वो इतने पत्रकारों के बीच सवालों के लिए मौजूद, जिस नेता को मजबूत कहा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 7 साल से इंतजार हो रहा है। आखिर विपक्ष में रहते हुए ही नेता प्रेस के लिए इतने उपलब्ध कैसे हो जाते हैं? सैकड़ों कैमरे से घिरे रहते हैं और सत्ता में जाते ही सवालों से भागने लगते हैं।
कोविड का जो दूसरा कोविड हुआ उसके बाद भी पत्रकारों पर संसद में आने जाने पर पाबंदियां लागू हैं, उनके प्रवेश को लेकर के तमाम तरह की अड़चनें पैदा की जा रही हैं, पैदा की गई हैं, और इससे लेकर के पत्रकार बिरादरी में जो कई वर्षों से संसद कवर कर रहे बहुत रोष है। उनका यह कहना है कि ये जो व्यवस्था आपने की है पिक एंड चूज की, और दूसरा ये कि लॉटरी सिस्टम बड़ा हास्यास्पद लगता है कि पत्रकार लॉटरी सिस्टम से संसद में प्रवेश करेंगे। पूरे देश में जब लॉकडाउन खुल गया है, लॉकडाउन अब नहीं रहा, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट, मॉल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेल, इवन हवाई जहाज में जो पाबंदियां थी सारी खत्म हो गई हैं, तो ये समझ से परे है और ये बताया नहीं गया है कि इसका कारण क्या है।
अगर संसद में सभी सदस्य पूर्ववत आने लगे हैं तो प्रेस के साथियों को भी पहले की संख्या के हिसाब से आने की अनुमति मिलनी चाहिए। दोनों सदनों के सभापतियों को इस पर विचार करना चाहिए ताकि सवालों का सिलसिला जारी रहे और हम देख सकें कि कौन बच के सवाल पूछ रहा है और कौन बच के जवाब दे रहा है। आप प्राइम टाइम के दर्शक हैं, आपका सवालों से बचना मुश्किल है। ब्रेक ले लीजिए। लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर है सोनभद्र, जिसे ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। अब इसके मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर सेंदूर ग्राम पंचायत में 36 लोगों के मरने की खबर है, जबकि स्वास्थ्य विभाग 16 मौतों की पुष्टि कर रहा है। जल निगम की जांच से यह बात भी सामने आई है कि मलेरिया के अलावा फ्लोराइड और नाइट्रेट के कारण भी लोगों की मौत हो रही है।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के म्योरपुर ब्लॉक के मकरा गांव में इन दिनों हर रोज किसी न किसी घर से शव यात्रा निकल रही होती है। करीब 4,500 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 2 महीने में 36 लोगों की बुखार के बाद मौत हो चुकी है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 65 साल की लक्ष्मीनिया की 26 साल की बहू और 4 नाती एक के बाद एक बुखार के बाद जान गंवा चुके हैं। 5 लोगों की मौत से पूरे परिवार में मातम है। लक्ष्मीनिया कहती हैं कि पहले बुखार और फिर पीलिया होने से सबकी मौत हुई।
हम लोग के परिवार में 5 लोग मरे हैं, वो हमारा परिवार बोलिए, मर जेरान जेठान हुआ, हमारे नातिन दूठे मरल बानी और जेठानी का मरल बानी, एक देवरे का नाती मरल बानी, तो एक का घर का है।
इसी गांव के 35 साल के हरि नारायण भी बीमारी के कारण एक हफ्ते में अपनी पत्नी और दो बेटों को गंवा चुके हैं। उनके बड़े भाई का एक बेटा भी बीमारी के बाद चल बसा। खेती और मजदूरी करने वाले हरि नारायण पूरी तरह टूट चुके हैं।
दो बच्चे और मेरी खुद की एक पत्नी।
तो कैसे हुआ ये सब?
पहले बुखार आया था, पहले दिन उसी दिन हम यहाँ बंगाली रहते हैं रोड पे, उनके पास इलाज कराए।
मकरा गांव में 40% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है। स्वास्थ्य विभाग पहले तो इन मौतों पर पर्दा डालता रहा, लेकिन जब मीडिया में ये मामला उठा तो गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज शुरू किया गया। ग्रामीणों की शिकायत है कि मकरा गांव में बने सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टरों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।
अच्छा, आपके बगल में ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ इलाज उलाज होता है?
कुछ नहीं बाबू, यहाँ कुछ नहीं इलाज।
और प्लस इसमें इलाज कराने के लिए जाएंगे तो प्लस
सुनिए 5 रुपया पैसा लेगा, 400 गोली भरा देगा।
इस गांव के सभी लोगों के पानी का स्रोत हैंडपंप है। बुधवार को ही जल निगम ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर कहा कि यहां भूमिगत जल में फ्लोराइड, आयरन और नाइट्रेट की मात्रा तय मानकों से कहीं ज्यादा है, जिससे पानी से जुड़ी बीमारियों की आशंका है। इसलिए उन्हें मिनी पेयजल योजना के तहत पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि गाँव में इतनी मौतों की वजह पानी ही है या कुछ और। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ इसी इलाके के विधायक हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने प्रदूषित पानी को मौतों का जिम्मेदार बताया।
जो इस मकरा ग्राम पंचायत में गंभीर बीमारी से जो मौतें हुई हैं, इसका मुख्य कारण है यहाँ का पानी, क्योंकि चूड़ा का पानी और नदी का पानी इतना प्रदूषित है कि यहाँ, क्योंकि अशिक्षा की कमी है, अशिक्षा की कमी के चलते जो है कि यहाँ के लोग जान नहीं पाते हैं और जैसे तैसे जो है कि जहाँ पानी मिलता है उसका उपयोग कर लेते हैं।
एक ही गांव में 2 महीने में 36 लोगों की मौत छोटी बात नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग यह आंकड़ा सिर्फ 16 बता रहा है। इतना कुछ होने के बाद अब जाकर प्रशासन गांव में कुछ सक्रिय हुआ है। सोनभद्र से प्रभात की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।